ये अलाका वो अलाका है जिसको पूरी दुनिया में ना हम किसी इलाके का हमारा नाम किसी मुल्क के साथ है, हम डिस्प्यूटेड एरिया में रहते हैं 64 साल से हम डिस्प्यूटेड हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक हमें कुछ भी नहीं किया।
हमें इंतहाई अफसोस है कि हम अपने वतन के लिए, हमारा तन मन धन, हमारा बच्चा बच्चा अपने वतन के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस कि हमें इस वतन के होने का कोई, हमें इसको क्रेडिट देने के लिए, उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, हम पाक फौज के कारगिल वार में भी साथ दिया है, अब भी पाक फौज को अगर जरूरत पड़े तो हमारा बच्चा बच्चा जान कुर्बान कर देगा और अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा। लेकिन हुकूमत से हमारा मतालबा यह है कि हमें जो नाकाबंदी किया जा रहा है, हमारे को शहीद किया जा रहा है, चिलास और कोहिस्तान में आपने खुद प्रोग्राम किया, हम देख रहे थे, आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। कोहिस्तान के अंदर लोगों को गले काटे गए और चिलास के अंदर लोगों को मार के उनको पत्थर से रगड़ा गया, लेकिन ये हमारे लिए इंतहाई नाइंसाफी है।
जाद हुसैन साहब, कोई बड़ा मसला यहाँ का क्या है जो आप जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं?
यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है वो इनकी आईनी हैसियत है। सन 1948 से ये इलाका डोगरों से आज़ाद किया गया और उसके बाद से आज तक का इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की शहरियत हासिल नहीं है, बाकायदा इसके लिए आईनी हुकूक हासिल नहीं है, और उसके साथ साथ भी यहाँ पर जो जब कोई ख़ास तालीमी अदारा भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती।
यहाँ पे कैडेट कॉलेज तो मैंने देखा है, स्कर्दू में कैडेट कॉलेज तो है
भाई, सिर्फ एक कैडेट कॉलेज में जहाँ पर एफएससी कराया जाता है, उससे तो किसी कौम के
कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे,
कोई यूनिवर्सिटी का शाह नहीं है, कोई बड़ा कारखाना।
गिलगित में तो यूनिवर्सिटी है। आप लोग इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि अगर सियाचिन से फौज नीचे आएगी तो वो पैसा जो है वो आपकी तरक्की पे खर्च होगा?
मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अमित मीर साहब कि आप सिकादू जैसे पसमानदा एरिया में आए, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी बात, जो अहम बात है, आपने यहाँ के मसाइल बताए पूछे, गोय कि आज हमारे फौजी जवान वहाँ उसके बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, हमें उसका बहुत अफसोस है। हमारे उलमा यहाँ के सरकर्दे और हम बच्चा बच्चा जवान बूढ़े, अगर हमारी जरूरत तो हम अपनी जानें वहाँ उनके लिए देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात यहाँ अहम कहना चाहता हूँ, इस इलाके के बच्चा बच्चा मुहिब वतन है, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें इस वक्त एक गवर्नर एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत इस इलाके को, इसके साथ अजला को एक गवर्नर आर्डर के एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत चलाया जा रहा
क्या,
है।
आपको क्या चाहिए?
हम ये चाहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर आईनी एक सेटअप दिया जाए, हमें एक सूबा बनाया जाए, हमें कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। जनाब मैं आपको बताऊं, एक एग्जीक्यूटिव आर्डर है वजीर आजम का किसी वक्त,
लेकिन यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की वजह से ये डिस्प्यूटेड एरिया है।
मैं अर्ज करूँ, अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो ये बराए नाम वजीर आला, बराए नाम गवर्नर क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती है। इस वक्त हमारा एक तरफ से सूबे का सेटअप है, वजीर आला है, गवर्नर है, दूसरी तरफ से हमारा सुप्रीम अपलेट कोर्ट है जहाँ एक चीफ जस्टिस है। हमें समझ नहीं आती है, यहाँ के आवाम कंफ्यूज है, ये हमें, हम चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन खत्म हो।
अच्छा, सियाचिन से अगर फौजें नीचे आ जाएं तो वो जो पैसा है वो आप पे, आपकी तरक्की पे खर्च होगा, उससे इत्तेफाक करते हैं आप?
जी जी, हम लोग मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं और हम आपका शुक्रिया भी अदा करता है कि इस सानहे के हवाले से आप यहाँ तशरीफ लाए, और हम आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि सियाचिन में जो अखराजात कर रहे हैं दोनों ममालिक, वो अपने वो कम करें, बल्कि फौज को नीचे लाएँ। लाया तो ये जो वहाँ पर खर्चा कर रहा है वो हमारे डेवलपमेंट पे लगे, ताकि ये इलाका तरक्की करे और यहाँ के आवाम खुशहाल।
इस वक्त आपकी बड़ी डिमांड क्या है, आपके इलाके में कौन सी चीज़ है जो कि नहीं है और आप चाहते हैं कि वो होनी चाहिए?
मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी जो महरूमी है वो हमारी आईनी है, क्योंकि हम अपने आप को गैर आईनी समझते हैं और हम गैर महफूज समझते हैं। जब तक किसी भी इलाके के अंदर कोई आईन ना हो, कोई कानून ना हो, तो वो इलाका हमेशा गैर महफूज रहता है। तो हम इस वक्त गैर आईनी होने के नाते हम गैर महफूज हैं, हम आईन चाहते हैं, हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, ताकि हमारे आवाम खुद फैसला करें कि हम कहाँ जाए। जैसे कि आपने कहा, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत हम मुतनाज़ इलाका है, तो हमारी इस कौम के मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है।
जी, आपका क्या नाम है?
मेरे नाम हाजी अब्दुल्ला है, मैं यहाँ पब्लिक स्कूल बस चलाता हूँ, और ये सियाचिन के मुतालिक, ये चिलास रोड के मुतालिक कुछ बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ बल्तिस्तान वालों ने हर फिरके का, जिसमें शाह, अले सुन्नत, अलादीन, नूरबख्श, सब मिलकर इस पूरा एरिया को आज़ाद किया है, कुर्बानी दिया है हमारे बाप दादों ने, तो इस इलाके के लिए हुकूमत ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और सियाचिन में जो हमारे फौजी जवान शहीद हुआ है उसको फौत हुआ नहीं कह सकते, क्यों शहीद वाला उनको पूछे जाते हैं अल्लाह की तरफ से, आपको कोई तमन्ना है कयामत वाला दिन? हमारे तमन्ना है हम फिर जिंदा हो जाए, फिर शहीद हो जाएंगे, फिर जिंदा हो जाए, फिर शहीद होगा, हमारे ये एक बहुत बड़ा तमन्ना है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जो उनके रिश्तेदारों को सब्र करने का तौफीक दे, और हम जो जितना जो पाकिस्तानी है सब इनके हक में दुआ करना चाहिए।
जो यहाँ पे चिलास की बात हो रही है कि वहाँ पे बहुत बड़ा सानिया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
चिलास का मुतलक ये है, इंसान जिंदा रहने के लिए ये हलक का जो नाली थ्रू रहना लाजिमी है। हम पाकिस्तानी है और ये जो गिलगित और बल्चिस्तान के लिए खाना होरा रास्ता जाना आना सब इसी रोड से होता है, तो हुकूमत को मुतलबा है इस रोड को तहफ़ किया जाए और यहाँ का लोगों का जो मसाइल जो है फौरन हल करना चाहिए। जो शहीद हुए है उनके लिए मुआवजा देना चाहिए, जो यहाँ जो है लोगों का बहुत बड़ा
मसाइल। एक मुझे बात बताएं, आपने कहा कि सब ने अहले सुन्नत ने, अहले तशी ने, नूर बख्शियों ने, सब ने मिल के इस खत्ते को आजाद करवाया, तो अब ये आपको आपस में कौन लड़ा रहा है?
आपस में ये जो दो सूरत है, एक जो है अभी पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ईरान सब एक हुआ है, तो गैर मुल्की जो है ना ये इंडिया अमेरिका हसद करते है कि ये ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान एक क्यों हुआ, तो इस वजह से कुछ लड़ाना चाहते हैं, कुछ यहाँ का शेर पसंद शामिल है।
आपके साथ ये कौन आपको आपस में कौन लड़ा रहा है?
ये असल में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं, ये एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये बात अमेरिका से हजम नहीं हो रही है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये फिरकावारियत फैला के ये चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम से ये तायद ले लें, तायद लेकर ईरान के ऊपर हमला कर दें, तो ये उस शैतान बुजुर्ग की ही कोशिश है, उनकी ही साजिश है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए, बहुत हो गया, इसको अब भी खत्म हो जाना चाहिए।
आपका क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं जिला सवाबी का रहने वाला हूँ, पठान हूँ और शायर हूँ। हाँ जी, हमारे लिए कोई
आप सवाबी के रहने वाले हैं, स्कर्दू में रहते हैं?
स्कर्दू में हम कारोबार करते हैं, आते जाते ऐसा निकाने वैसे। हाँ जी, तो हम जो वाकियात हुई है दहशतगर्दी की, हम मजम्मत करते हैं। हमने ये भाई को पता है, उस दिन खैबर पख्तूनख्वा बल्तिस्तान दोस्ती के जिंदाबाद के नारे भी हमने लगाए हैं, और हम ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और ये जी भी जो है इसका जोग्राफिया एक है जो क्यामत तक रहेगा। हम तो हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की तरह अमन की से रहे, और इसके अलावा जो है ना, हम खुद ये कहते हैं कि जंग खुद एक मसला है, बकोले शायर लुधियानवी ये मसलों का हल नहीं दे सकते। और मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि अगर जंग से इज्जत होता तो मेरा ख्याल ये कि कुत्ता सबसे अच्छा लड़ता है और वो गांव का चेयरमैन होता, मेरा ये नजरिया है। हम भाईचारे से रहना चाहते हैं।
इस रास्ते को गैर महफूज किसने किया? किसने किया?
सबसे पहले आपका शुक्रगुजार है, आज हमने फ्लाइट में आपका हर प्रोग्राम हम देखते हैं, आप उधर से इधर आया। हमारे मेन वसर हमारे शहर है कारागरों का मसला है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपने कोहिस्तान का वाकया भी देखा है, 16 को शहीद किया गया, इसको फौरन यानी उसको 40वां नहीं हो गया था, हमारा 7/14 जिसमें 3 हमारे टोन एरिया का है। आज आपने इधर आवाज़ सुना, उसी के उनका मुनासबत से उनका वो था दुआएँ था, आपने वो भी सुना, क्यों हम आपके शुक्र मेन हमारा मकसद है हमारे इस रोड को हमें क्लियर करके देने चाहिए, होश या फौज लाए या जिस तरह से करे, ये हमारे ये रोड हमारे मेन मसला है।
ये जो रोड स्कर्दू से गिलगित जाती है?
नहीं, पिंडी जाती है सर,
गिलगित से फिर आगे पिंडी जाती
है, शहर कराकर मेन जो जहाँ जुगलोट से लेके हमें बिशाम तक का मसला है। कब तक हम इस तरह शोधा वो शहीद उधर से वो शहीद कर हम उठाते लाए? ये हमारे उलमा का कराम उलमा कराम का मेहरबानी है, 1.5 लाख आदमी जमा हो गए, फिर भी हमने इधर शिया सोने का कोई एक किसी के ऊपर थप्पड़ भी नहीं लगा है। आप सुवाबी वाले से पूछे, आप पठान से पूछे, इधर किसी ओवरऑल आप चिरास वाले से ही पूछे, इधर लकड़ का कमने वाले हैं, उनके किसी के थप्पड़ भी नहीं लगा है।
ये जो गिलगित में जो एक दूसरे पे हमले हुए और चिलास में जो फसादात हुए, तो उसका असर स्कर्दू में बिल्कुल नहीं पड़ा?
इसका बिल्कुल असर तो पड़ेगा, इधर जो कंट्रोल करने वाले हमारे उलमा है, हमारे साइंसदान है, सबने हमने कंट्रोल किया है, हमने सब्र किया है।
वो जो स्वाबी वाला पठान है, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा?
नहीं कहा, नहीं जी, हमको कैंप में ले गया था, हमारे पास उलमा आए हैं और हमें बहुत दिल दिया है, हमारी जान की अमान दी है, हमें रोटी दिया है, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा है, बल्कि इज्जत दिया है। हाँ जी, तो मेरा ये पैगाम है अपने लोगों, हम हमारे अभी बिशाम से पेशावर तक इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, अगर कोई मसला है तो इसके अपने सूबे में।
अस्सलाम वालेकुम।
हाजी मोहम्मद रजा, सदर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से करता हूँ।
तो ये तो रोड खोलने की बात हो रही है, तो आप ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं, तो ये बताए ना कि ये रोड जो है ये क्यों बंद है, कैसे खुल सकती है, क्या प्रॉब्लम है?
रोड पे तहफ़ चाहिए, हमारा मुतालबा है जी, ये फौज का हवाला होना चाहिए। 780 किलोमीटर कर्दू से पिंडी का फासला, उसमें से जो है ज़्यादातर हिस्सा इन दहशतगर्दों के पास है। अभी हमारे 6 गाड़ियों को बिला वजह कर्दू वालों की, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे 6 गाड़ियों को, 3 हमारी कंपनी की बसें और 3 और उनको जलाया।
आप जरा इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी बात सुन रही है ना
जी,
बताएं कि किस किस जगह पे प्रॉब्लम है, कहां कहां पे आपकी गाड़ियों पे हमला होता है?
चिलास और कोहिस्तान।
चिलास और कोहिस्तान
जी,
कोहिस्तान में तो पहले भी हुआ,
पहले भी
अभी
हुआ।
फिर चिलास में हुआ,
मेरी गाड़ी थी, अभी भी हमारी गाड़ियाँ चलाई।
अच्छा, तो ये आपको तहफ़ फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है?
यह हुकूमत की जिम्मेदारी है।
कौन सी हुकूमत?
हमारी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनकी जिम्मेदारी है। ये जो बाद वाला सानिया हुआ चिलास का, इसका खसूसी तौर पे जो है वजह ये बनी कि इन्होंने हमारे 30 साल का जो हमारा रात को चलने का जो सिलसिला था इसे चेंज किया, सानिया कोहिस्तान के बाद दिन को रखा। हम लोग वज़ीर आला साहब से मिले, उनको हमने ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के वक्त उनको कायल करने की कोशिश की, वो कायल हुआ। और इस मुजमेरात के हमने वैसे गिलगित जो है उसमें तो हालत जंग है।
तो अगर आप इजाज़त दें तो पुलिस वालों से मैं बात कर लूँ। आप सलाम करने आए थे?
सिर्फ आपको सलाम करने के लिए।
बड़ी मेहरबानी, आप सलाम करने, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे कि ये रोड जो है ये क्यों गैर महफूज है?
सर, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। हर जिस तरह पंजाब में पंजाब हुकूमत ने किया था एक जमाने में, आपको याद होगा, वहाँ उन्होंने चौकियाँ बनाई थी, उस पर बाकायदा चेक पोस्ट होते थे और टाइमिंग नोट करते थे गाड़ियों का, तो तेज़ रफ्तार न चले। इस तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट्स होनी चाहिए, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक यही हालात चलते रहेंगे।
तो ये अब पुलिस ने भी ये बात कंफर्म कर दिया है, यहाँ स्कर्दू से जो इस्लामाबाद रावलपिंडी का फासला है तकरीबन 750 किलोमीटर है, और यहाँ से जो लोग बाई रोड जाते हैं पिंडी इस्लामाबाद और वहाँ से इधर बाई रोड आते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, इसलिए हम भी सिर्फ हवाई जहाज के जरिए यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए भी बहुत काबिल गौर है। उन्हें चाहिए कि इस इलाके को महफूज बनाएं। यहाँ से आगे सियाचिन सेक्टर है, जहाँ के पाकिस्तानी फौज के जवान जो हैं वो इस मादरे वतन के तहफ्फुज के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और बर्फ के तोदे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन यहाँ स्कर्दू के लोग आपको ये बता रहे हैं कि ये महफूज नहीं है, इन्हें महफूज बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, और अब हम प्रेस क्लब स्कर्दू में मौजूद हैं और यहाँ पे बात करेंगे स्कर्दू प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, तारुफ तरह करवाएंगे अपना?
जी, मेरा नाम कासिम हुसैन भट्ट है और मैं बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर हूँ।
भट्ट जो है वो स्कर्दू में भी पहुंच गए हैं
जी। भट्ट हमारी मदर लैंग्वेज में पत्थर को कहते हैं, इस हवाले से भट्ट के नाम से जो है मैं मारूफ हूँ यहाँ पे।
तो ये बताएं कि ये जो स्कर्दू शहर है ये बल्तिस्तान का एक अहम शहर है, यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है?
जी, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो एजुकेशन का है और बेरोजगारी का है। चूंकि हम समझते हैं कि जो एजुकेशन का सेक्टर है, यहाँ की जो नई नस्ल है वो अभी इल्म की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो रही है, और जो रास्ते थे इससे पहले जो सड़कों की का जो मसला था वो कदर हल हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल भी बहुत सारे बने हैं, लेकिन जो स्टाफ है, एजुकेशन स्टाफ है वो बहुत ही कम है, और जदीद जो नसाब है इल्म का, तालीम का, वो पूरी तरह यहाँ पर राइज नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 5 किस्म के जो है ना मुख्तलिफ जो है वो नसाब पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इसके इन तमाम बातों के बावजूद हम समझते हैं कि एजुकेशन पे अब भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती है।
जी, स्कर्दू प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सार अब्बास साहब, आपको तो मैं बड़े सालों से जानता हूँ, यहाँ पे हर कोई ये कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है, एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है, तो जब से ये ग्यारी सेक्टर में सानिहा हुआ है और पाक फौज के जवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो बर्फ के तोदे के नीचे आई है, तो दोबारा सियाचिन का मसला जो है उस पर फोकस हो गया, और एक बहुत बड़ा जो मकतबा फिक्र है वो ये कह रहा है कि दोनों ममालिक को अपनी फौजें निकालनी चाहिए। आप सहाफ़ी हैं, यहाँ की पब्लिक ओपिनियन क्या है?
जी यहाँ पे खैर पाक फौज की वजह से लोगों को काफ़ी मदद भी मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो बॉर्डर इलाके जो हमारे हैं वो बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं, बहुत पसमंदा इलाके थे, और जब से यहाँ पे तकरीबन 84 से यहाँ पे फौज तैनात हुई है तब से इन इलाकों के अंदर जो है रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है, पोटरिंग का काम करते हैं लोग, उसके अलावा अशाय खुर्दनोश वहाँ पर सस्ती मिलती है आर्मी से, उसके अलावा भी लोगों को जो है वो काफ़ी फ़ायदा है, बाज़ जगहों पर आर्मी ने एजुकेशन के अपने स्कूल्स भी खोल रखे हैं, तो यहाँ पर आर्मी के आने का लोगों को आर्मी कम्युनिटी को तो काफ़ी फायदा हुआ है, सड़कें भी पक्की हो गई आर्मी की वजह से, और कहा यह जाता है कि अगर ये महाज न खुलता और यहाँ पे आर्मी ना होती तो शायद पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमतें हैं उनको इन गरीबों तक पहुँचने में सदियाँ लग जाती हैं और ये हमेशा नज़रअंदाज ही रहते हैं।
एक मैंने यहाँ पर यह भी बात सुनी है कि अगर 1999 में कारगिल की जंग ना होती तो शायद अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियाचिन का मसला तय हो चुका होता और ये सानहा पेश ना आता।
ये कहा जा रहा है कि कारगिल वार से पहले वाजपेयी के साथ नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी उसमें ये बातें हो गई थी कि P-72 की पोजीशन पे जो है दोनों अफवाज को लेके आएंगे और पाक फौज जो है वो सियाचिन से नीचे आकर यूचुंग के मुकाम पर उन्होंने आ जाना था और उधर से कारगिल के मुकाम पर उन्होंने चला जाना था। उसका आपकी बात सही है कि उस अगर वो आ जाते तो शायद इस तरह के वाकयात पेश ना आते, क्योंकि ये मामूल का वाकया है और यहाँ पर जब से ये पाक फौज इन पहाड़ों पर, इन बर्फानी इलाकों पर, गिलशाही इलाकों पर तैनात हुई है तब से जो है इस तरह के वाकयात हर साल पेश आ रहे हैं और हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग फ्रॉस्ट बाइट की वजह से जख्मी हो जाते हैं और सैकड़ों ही की तादाद में लोग जो है बर्फानी तोते तले दबकर जो है जहाँ बहक हो जाते हैं। दोनों तरफ यही वाकयात हैं और इससे पहले भी दो बड़े वाकयात हो चुके हैं जिसमें 16 अफराद और 14 नौजवान जो है पाक फौज के वो शहीद हो चुके हैं।
एक और बात बताएं कि ये एक आम तासुर ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये प्रो पीपल्स पार्टी लोग हैं, जब भी यहाँ इलेक्शन होता है पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, यही सूरत सिंध में भी है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं और यही सूरतेहाल जो है वो बलूचिस्तान में भी है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में हालात ख़राब हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी जो है वो ANP की कोलिशन पार्टनर है, वहाँ पर भी अमन अमान की सूरतेहाल ख़राब है, तो यहाँ पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये जो हालात ख़राब हैं इसकी वजह पिछली हुकूमतों की पॉलिसियाँ हैं या इस हुकूमत की पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
जी इसकी बड़ी वजह तो मौजूदा हुकूमत ही है, इसलिए कि अगर हालात पे काबू करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी वो इन्हीं की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनके काबू में है, इनके अख्तियार में है और इनका ज़्यादा ये काम बनता है और पिछली हुकूमतों के भी किसी हद तक जो है वो पॉलिसीज रही हैं कि जिसकी वजह से ये इलाके जो है बहुत हद तक जो है गैर महफूज रही हैं, खासतौर पर जो हमारी जहाजी पॉलिसी रही है उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो आज़ाद हो गए और आकर लोगों ने जो है वो उसको उनको जो है वो काबू में रखने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं था कि जिसकी जरिए से हम उनको कोई रोजगार देते या किसी और काम पे डाल देते, ये एक वजह है। लेकिन उसे जहां तक बात है कि ये पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में 2009 के इंतखाबात से पहले काफी पॉपुलर थी, अब मौजूदा जो 2 साल हमने गुजार लिए हैं उसके बाद से गिलगित बल्तिस्तान में भी पूरे पाकिस्तान की तरफ पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत गिर गया है, उसकी बुनियादी वजह जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुनियादी वजह है, उसके अलावा महंगाई है, उसके अलावा बेरोजगारी है, अगर रोजगार दे भी रहे हैं ये लोग तो वो सिफारिश और रिश्वत के ऊपर दे रहे हैं।
आप बट साहब इतफाक करते हैं?
नसार जी, मैं बहुत सारी बातों पर इतफाक करता हूँ, ताहम यहाँ पे जो फिरकावाराना और जहादी अनासिर की जो बात की निसार साहब ने, मैं समझता हूँ कि 88 से पहले, जनरल जिया के दौर से पहले यहाँ पे शिया सुनी किसी किस्म का कोई फसाद नहीं था। हमने ये भी देखा कि अयाम मुहर्रम के दौरान जब शिया हजरात मातमी जुलूस बरामद करते थे तो सुन्नी हजरात जो है वो सबीलें लगाते थे।
ये तो पाकिस्तान के हर सूबे की और हर शहर की कहानी है, हर जगह पे शिया सुन्नी हमांगी थी
जी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली ये बात खास तौर पे थी और बहुत सारी बरादरियां हैं, आज भी हमारे आपस में रिश्तेदारियां हैं, लेकिन 88 में जब जनरल जिया साहब की सरपरस्ती में, लोगों का ये कहना है, गिलगित बल्तिस्तान कवाम का ये कहना है कि उनकी सरपरस्ती में जो लश्कर कशी हुई गिलगित बल्तिस्तान पे, उसके बाद से फिर कवाराना फसादात जो है इन इलाकों में फूट पड़े और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि चलास में और कोहिस्तान में जो बेगुनाह मुसाफिर थे, जो इस्लामाबाद से अपने घरों को आ रहे थे, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। लेकिन इस हुकूमत का भी रोल यहाँ पे हमें बहुत ही कमजोर नजर आता है कि इतने खुले तौर पे दहशतगर्दी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और मुख्तसर से एरिया में अपनी जो है ये रिट बहाल नहीं रख सके।
जी इस वक्त यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मकादबे फिक्र के उलमा जो हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये सारे इकट्ठे हैं और ये इकट्ठे मिलकर ये मुतालबा कर रहे हैं, ये इनकी अपील है कि यहाँ पे अमन कायम किया जाए। جی ذرا اپنا نام دیں گے.
میرا نام فرمان علی ہے, اسماعیلیت کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ہم سب علماء اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا مطالبہ ہے کہ یہ امن قائم ہو.
جی میرا نام عارف حسین ہے, میں نور راشی کا خطیب ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دہشت گردی کے سلسلے یہاں تک نہ پھیلے اور آئندہ کے لیے حکومت مستقل طور پر ایسا حل سوچیں یہ راستہ محفوظ ہو کہ رکاوٹ کو مزید ہوا نہ ملے.
جی میرا نام مولوی محمد ابراہیم خلیل, صدر انجمن اہل سنت بلتستان, خطیب جامع مسجد اہل سنت. الحمدللہ بلتستان میں قیام امن کے سلسلے میں تمام علماء کرام جناب علامہ شیخ حسن جعفری صاحب کی قیادت میں ہمیشہ فکر مند رہا ہے اور آج بھی فکر مند ہے, اور یہ ملک اور ملت کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو ہم ہمیشہ پورا کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
سید محمد باقر حسینی, ہم بھی یہاں پر تمام علماء, یہ صرف آج اکٹھے نہیں ہیں, ہم ہر وقت اکٹھے ہی رہتے ہیں. ہمارے درمیان میں رشتہ داری ہے اور ہم اس جو گراؤنڈ واقع ہوئے ہم اس کا پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ مجرمین کا قرار واقعی سزا دلانے کے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید مزار حسین موسوی, ملت اسلامیہ پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ اس بات پہ سوچیں کیا ہمارا قرآن ایک ہے کہ نہیں, کیا ہمارے خدا ہے ایک ہے کہ نہیں, نبی ایک ہے. جب تمام یہ تمام بنیادی چیزیں ایک ہیں تو تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اس سے کہ ہمارا قرآن کہیں جدا تو نہیں ہے, کہیں رسول کہیں سے جدا تو نہیں ہے. اگر یہ جدائیاں ہمیں یہ جدائیاں ڈال رہی ہیں, ملت اسلام کا پاکستان کا ہر فرد اگر یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ خدا ایک ہے, اتحاد ہو سکتا ہے اور ہم مل کر بیٹھ سکتے ہیں. جب خدا ذہن سے نکل جائے تو یہ تمام تفریق ہے.
میرا نام عبدالقادر رحمانی ہے, میں جمعیت اہل حدیث کا مفتی اور قاضی ہوں اور مرکز اسلامی کا خطیب ہوں. میں امن امان کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے تاریخی خطبے میں انسانی جان مال عزت و آبرو کی بھلا ان دماغکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم حاضر فی شہر فی ولادکم حاضر فرمایا, تمہارے خون, تمہارے مال, تمہارے آبرو جس طرح یوم عرفہ کی اہمیت ہے, اس شہر مکہ کی اہمیت اسی طرح محترم ہے. تو اس حوالے سے تمام علماء کرام سے عرض کرتا ہوں کہ امن امان کے قیام کے لیے انسانی جان و مال و عزت و احترام کے اس پر درس دیں تاکہ انسان کی جان محفوظ.
یہاں پہ اہل تشیع کی اکثریت ہے,
یہاں تشیع کی اثریت ہے.
آپ کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے,
میں
کبھی اہل تشیع نے آپ کو تنگ کیا؟
میں اس حوالے سے بالکل صاف صاف کہتا ہوں کہ یہاں اثریتی فرقے ہونے کے حوالے باوجود یہاں کے علماء کا کردار بہت ہی شاندار رہا ہے امن امان کے قیام میں, اور خاص کر علامہ حسن جعفری صاحب ان کے رفاق کرام کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی امن امان کا مسئلہ کھڑا نہیں ہونے دیا. تو تمام علماء سے بھی ہم عرض کرتے ہیں.
اور بات سمجھ آ گیا ہے, دیکھیں ایک اہل حدیث عالم دین جو ہے وہ شیعہ علماء دین کی تعریف کر رہا ہے, تو مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ سب خود ہی سمجھ جائیں کہ اگر یہاں پہ علماء کرام مل کے امن قائم کر سکتے ہیں تو پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیوں نہیں. پاک فوج کے وہ جوان جن کے جو کہ گیاری سیکٹر میں برف کے تودے تلے دبے ہوئے ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں اور ان کے ویوز بھی آپ کو سنوائے, اور سکردو شہر کے لوگوں سے اور یہاں کے صحافیوں سے بھی آپ نے بات چیت سنی. یہاں کے لوگوں کے مسائل وہی ہیں جو پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, آزاد کشمیر اور پاکستان کے دیگر لوگوں کے مسائل ہیں, لیکن یہاں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے. اور گلگت بلتستان کا جو رابطہ ہے راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ وہ کٹا ہوا ہے. یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 750 کلومیٹر کی سڑک ہے یہ جگہ جگہ غیر محفوظ ہے, اور اس کو محفوظ بنانا جو ہے وہ نہ صرف یہاں کی گلگت بلتستان کی حکومت کا فرض ہے بلکہ خیبر پختونخوا اور اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے اس کا بھی فرض ہے. موجودہ حکومت جو کہ گلگت بلتستان میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے, اس سے لوگوں کے بہت سے شکوے شکایتیں ہیں, لیکن اگر یہ ایک چھوٹا سا یہ کام کر دیں کہ یہ جو سڑک ہے گلگت بلتستان کی جو ملاتی ہے پاکستان سے 750 کلومیٹر کی جو سڑک ہے, اگر اس کو محفوظ بنا دیا جائے تو یہاں کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور یہاں کے لوگ بہت شکر گزار ہوں گے جناب صدر آصف علی زرداری کے بھی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بھی اور یہاں کی حکومت کے بھی. تو یقیناً ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور کوئی کام کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم یہ جو سڑک ہے گلگت بلتستان سے جاتی ہے راولپنڈی اسلام آباد کو، اسے محفوظ بنانے کے لیے فوری طور پر کوئی اقدامات ضرور کیے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب گلگت آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور ان کے واپس جانے کے بعد بھی یہاں پہ قتل و غارت جاری رہے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں تو اس کے بعد امن بحال ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین نثار عباس کے ساتھ حامد میر کو اسکردو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔